الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجاءوا على قميصه بدم كذب، قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل، والله المستعان على ما تصفون. وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه، قال يا بشرى هذا غلام، وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون، وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا زدنا علما. اس کلاس میں ہم سورہ یوسف کی تفسیر پڑھتے ہیں، معرفت القرآن جلد نمبر 5 سے، اور جو آیات ابھی تلاوت کی گئی ان کے معرفت مسائل ابھی چل رہے ہیں. تو کہاں تک یہ سٹوری حضرت یوسف علیہ السلام والی پہنچی تھی کہ انہوں نے یوسف علیہ السلام کو جو ہے وہ کنویں کے اندر پھینک دیا تھا یا ڈال دیا تھا، اور پھر جو ہے نا وہ یہ اپنے والد صاحب کے پاس آ گئے، اور آ کر کے انہوں نے رونا دھونا مچایا. ٹھیک ہے، وجہ اعلیٰ قمیص ہی بدم کذب، جھوٹا خون لگا کر کے. تو یعقوب علیہ السلام کو بھی صاف نظر آ رہا تھا کہ قمیص تو پوری کی پوری انٹیکٹ ہے، وہ تو پھٹی بھی نہیں. تو انہوں نے کہا کہ بھائی یہ کیسا حکیم اور عقل مند بھیڑیا تھا کہ یوسف کو اس طرح کھایا کہ کرتا کہیں سے پھٹا بھی نہیں. ٹھیک ہے، تو یوسف علیہ السلام سو یعقوب علیہ السلام پر ان کی جال سازی کا راز فاش ہو گیا، اور فرمایا بل سب ولت رقم انفسکم امرن، یعنی تمہارے نفسوں نے جو ہے نا وہ ایک اس معاملے کو جو ہے وہ تمہارے لیے مزین کر لیا ہے. پس صبر جمیل، پس میں تو ایک بہت ہی اچھا خوبصورت صبر کروں گا. اللہ المستعان علی ما تصفون. ٹھیک ہے، تمہارے نفسوں نے ایک بات بنا لی ہے، اب میرے لیے بہتر یہ ہے کہ صبر کروں، اور جو کچھ تم کہتے ہو اس پر اللہ سے مدد مانگوں. ٹھیک ہے، مستعان یعنی مدد کرنے والا، اللہ المستعان. اچھا، اب اس کے بعد حضرت مفتی شفیع رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے اوپر ایک مسئلہ لکھا کہ یعقوب علیہ السلام نے کرتا صحیح سالم ہونے سے برادران یوسف علیہ السلام کے جھوٹ پر استدلال کیا ہے. ٹھیک ہے، استدلال کہتے ہیں کہ دلیل پکڑنا یا دلیل حاصل کرنا. ٹھیک ہے، یعنی انہوں نے اس چیز کو دیکھا اور اس کی بنیاد پر یہ فیصلہ کیا کہ یہ لوگ جو ہیں وہ جھوٹ بول رہے ہیں. ٹھیک ہے، کرتے کو دیکھ کر کے فیصلہ کیا. تو اس سے معلوم ہوا کہ قاضی یا حاکم کو فریقین کے دعوے اور دلائل کے ساتھ حالات اور قرائن پر بھی نظر کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، فریقین کے دعوے اور دلائل. ٹھیک ہے، جب دو لوگوں کے درمیان کوئی قضیہ ہوتا ہے، کوئی ایشو ہوتا ہے، تو وہ قاضی کے پاس لے کر کے آتے ہیں. اب یہ والی سائڈ بھی جو ہے وہ اپنا ایک دعویٰ کرتی ہے اور اس دعوے کے حق میں دلائل دیتی ہے. اسی طرح دوسری سائڈ جو ہے وہ بھی ایک دعویٰ کرتی ہے، کلیم کرتی ہے، جس کو انگریزی میں کلیم کرنا کہتے ہیں، اور کچھ ایویڈنسز، کچھ پروفس، کچھ آرگیومنٹس اپنے حق میں پیش کرتی ہے. ٹھیک ہے، تو اب یہ صحیح ہے کہ وہ صحیح ہے، قاضی صاحب نے یہ فیصلہ کرنا ہوتا ہے کسی کے حق میں. تو قاضی کا کیا کام ہے؟ کیا صرف اس کے دلائل دیکھے سنے اور اس کے دلائل دیکھے اور سنے؟ ٹھیک ہے، اور اس کے بعد پھر ٹاس کرے، جیسے کرکٹ کا امپائر جو ہے وہ ٹاس کرتا ہے اور اس کی بنیاد پر جو ہے وہ فیصلہ کرتا ہے کہ کس کے حق میں آیا. ٹھیک ہے، کوئی جو کیا کہتے ہیں اس کو، یعنی کیا کہتے ہیں ٹاس کرنے کے لیے قرآن فال نکالے. ٹھیک ہے، یا جو ہے وہ کیا کہتے تھے وہ جو لفظ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس طریقے سے رینڈملی جو ہے وہ فیصلہ کر دے، ہرگز نہیں. یا یہ کہ کیا وہ قاضی یہ دیکھے کہ بھئی یہ کتنا آرٹیکولیٹ قرآن اندازی کرے. ٹھیک ہے، نہیں. یا یہ دیکھے کہ کتنا اچھے الفاظ استعمال کر کے وہ اپنا کلیم کر رہا ہے، کتنی اچھی لینگویج استعمال کر رہا ہے، اور اس کی بنیاد پر جو ہے وہ فیصلہ کرے. یا یہ دیکھے कि ये जो है ना वो बात करते हुए रोना धोना भी मचा रहा है। जैसे खवातीन जब उमूमी तौर पर अपना केस पेश करती हैं तो वो रोने धोने के साथ पेश करती हैं, लेकिन आंसुओं के साथ, हाय मैं मजलूम, खवातीन भी पेश करती हैं, कुछ मर्द भी ऐसे ही कर रहे होते हैं, मेरी मजलूमियत, मैं मजलूम, मैं बेचारा, मैं ऐसा, मैं वैसा। तो काजी जो है वो मजलूमियत के जो दुहाइयां हैं उनकी बुनियाद पर फैसला कर दे। कैसे फैसला करे काजी? ठीक है, तो वो हजरत फरमा रहे हैं कि हालात और कराइन पर भी नजर रखनी चाहिए, यानी उस काजी को जो है ना फिर तहकीक करनी पड़ेगी, इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ेगी। और वो इन्वेस्टिगेशन कैसे करेगा? वो जो उस केस के से रिलेटेड जो दूसरे फैक्टर्स हैं, जो दूसरे जिनको कराइन कहा जाता है, एक्सटर्नल फैक्टर्स, उनके ऊपर भी नजर रखनी चाहिए बिफोर डिसाइडिंग। ठीक है, बिफोर डिसाइडिंग कि क्या क्या सच है क्या गलत है। ठीक है, तो ये तो हो गया काजी का मामला। ठीक है, कि भाई जो जज साहब हैं और जो है ना वो कोर्ट रूम के अंदर बैठे हुए हैं, तो उनको इस बुनियाद पे फैसला करना चाहिए। ठीक है, लेकिन इसको हम अपनी हिदायत के लिए कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं, खुसूसन आज के दौर के अंदर? ठीक है ना, वो क्या कि हमारे सामने भी जो है ना वो केसेस आते हैं, हमारे सामने भी जो है दो फरीक या तो बाकायदा अपना कोई मसला लेकर के आते हैं, या ये कि बाकायदा मसला लेके तो नहीं आते, लेकिन उनकी उनकी जो जो यानी एक आर्बिट्रेशन की सूरत हमारे सामने आती है। ठीक है, अच्छा, केस लेकर के आना हमारे सामने वो ये हो सकता है कि भाई खानदान के अंदर जो है ना वो दो लोगों के दरमियान झगड़ा हो गया और हम जो है वो जरा क्या कहते हैं सीनियर पोजीशन पर हैं, बुजुर्ग हैं खानदान के। ठीक है, तो अब दो लोग जो है वो खानदान के हमारे सामने आ रहे हैं, तो ऐसा हो सकता है, हमारे साथ ये सिचुएशन हो सकती है कि खानदान के दो फर्द आ जाएं, या ये कि आप दफ्तर के अंदर मैनेजेरियल पोजीशन के ऊपर हैं तो आपके दो एम्प्लॉयज आपके सामने आ जाएं कोई झगड़ा लेकर के, कोई मामला लेकर के। ठीक है, तो ये तो एक आम सी सूरत है कि किसी के साथ पेश आ सकती है, लेकिन एक ऐसी सूरत है जो कि हर एक के साथ पेश आ रही होती है, हर एक के साथ पेश आ रही होती है, वो क्या कि दुनिया के अंदर कुछ मामलात हो रहे होते हैं। ठीक है ना, उन मामलात के जो है ना वो पिक्चर हमारे सामने आ रही होती है, वन साइड ऑफ द स्टोरी एंड अदर साइड ऑफ द स्टोरी। ठीक है, एक तरफ के दलायल और एक तरफ के जो है वो क्लेम्स हमारे पास अखबारों के जरिए से आ रहे होते हैं। ठीक है, या जो है वो सोशल मीडिया के जरिए से, जो कि अखबार की ही एक शक्ल है, मीडिया की एक फॉर्म है ना सोशल मीडिया। ठीक है ना, सोशल मीडिया में और रेस्ट ऑफ द मीडिया में क्या फर्क है? अखबार इज ए फॉर्म ऑफ मीडिया, टेलीविजन इज अ फॉर्म ऑफ मीडिया। ठीक है, और मीडिया की क्या शक्ल है? रेडियो, रेडियो इज अ फॉर्म ऑफ मीडिया। ठीक है, और वेबसाइट्स, वेबसाइट्स भी एक मीडिया की फॉर्म है, इंटरनेट की वेबसाइट्स। ठीक है, तो इनमें और सोशल मीडिया में क्या फर्क है? ठीक है, वेबसाइट्स और अखबार और टेलीविजन चैनल्स, ठीक है, टेलीविजन चैनल्स और रेडियो चैनल्स, ये मीडिया है, ये सोशल मीडिया नहीं है, ये मीडिया है। ठीक है ना, तो एक चीज होती है सोशल मीडिया जो कि सेलफोन, जब से हेलफोन बना जब से स्मार्टफोन बना है, जिसको स्मार्टफोन कहा जाता है। ठीक है, तो जब से ये स्मार्टफोन दुनिया में आया है तो उसके बाद से सोशल मीडिया के साथ आया है, तो इसमें और बाकी मीडिया में क्या फर्क है, अगर आप में से कोई बताना चाहे क्या फर्क है बाकी मीडिया में और सोशल मीडिया में? जी, इंटरैक्टिव कम्युनिकेशन, सोशल मीडिया अदर वन वे। अच्छा, अदर जो अदर मीडिया आउटलेट जो है वो वन वे होती हैं और सोशल मीडिया जो है वो इंटरैक्टिव कम्युनिकेशन होती है। अच्छा ठीक है, चलें, आपकी एक तारीफ हमने ले ली, वेबसाइट हैंडल फ्रॉम वन पर्सन एंड सोशल मीडिया इज हैंडल बाय एवरीवन, एग्जैक्ट सोर्स का नहीं पता रहता है। ठीक है, कंटिन्यूस बॉम्बार्डमेंट ऑफ ऑन सोशल मीडिया, वो कंटिन्यूस बॉम्बार्डमेंट तो टीवी स्टेशन पर भी होती है, रेडियो स्टेशन पर भी होती है, अखबार में भी होती है, रीच एंड स्पीड इज वेरी हाई। ठीक ठीक है, चले ठीक है, जज़ाकुमुल्लाह। सही, तो कुछ बात आगे बनती है कि टेलीविजन स्टेशन का आपको कुछ जो है ना वो अंदाजा होता है, या अंदाजा आप लगा सकते हैं कि इसके पीछे ओनर्स कौन है, कौन इसके जो है वो कंट्रोलर्स है। ठीक है, अखबार के भी ओनर्स का जो है वो आपको पता चल सकता है आसानी के साथ कि अखबार की किसकी किसकी ओनरशिप के अंदर है। ठीक है, इंटरनेट वेबसाइट का भी आपको पता चल सकता है कि भी कौन सी कंपनी ओन करती है इसको, या कौन सी ऑर्गेनाइजेशन इसको ओन करती है वेबसाइट। ठीक है, इट लर्न्स योर इंक्लिनेशन, सजेस्ट यू इंफॉर्मेशन एज पर योर इंक्लिनेशन। ये सोशल मीडिया की डेफिनेशन तो, या फर्क में तो मैं नहीं कहूंगा ये वाला फर्क। चले, इंटरेक्शन वाली आपने बात को दूसरे अंदाज में बयान कर दिया। सोशल मीडिया कनेक्ट्स ईच इंडिविजुअल एंड हिज व्यूज, हाउएवर मीडियाज इंफॉर्मेशन फ्रॉम अ पर्टिकुलर कंट्रोलिंग ग्रुप। ठीक है ना, जी, यही आजिज भी कहना चाह रहा है। ठीक है, प्रेजेंट वाइड स्प्रेड बाई ईच एंड इन एवरी वन। हाँ, सोशल मीडिया की एक जो जनरली परसीव्ड अंडरस्टैंडिंग है ना सोशल मीडिया की, वो ये है कि इट्स नॉट कंट्रोल्ड बाय ए सेंट्रल अथॉरिटी। इट्स नॉट कंट्रोल्ड बाय ए सेंट्रल अथॉरिटी, एक मरकजी ओनरशिप नहीं होती किसी किसी के ऊपर। जबकि टीवी स्टेशन, अखबार और वेबसाइट और रेडियो स्टेशन, इसकी एक मरकजी जो है वो ओनरशिप होती है, कंट्रोल अथॉरिटी होती है, जो कि पीछे से असल में हकीकत ये होती है कि वेबसाइट के तो शायद आप एक्सेप्शन लगा सकें, लेकिन टीवी, रेडियो और अखबार, पीछे कंट्रोलिंग अथॉरिटी जो होती है वो उस मुल्क की गवर्नमेंट होती है, उस मुल्क की गवर्नमेंट होती है जिस मुल्क के अंदर वो चीज होती है। अब हमारी ये अपनी बेवकूफी है कि हम समझ रहे हैं कि कुछ मुल्कों के अंदर जो है वो प्रेस को आजादी हासिल होती है, कुछ मुल्कों के अंदर टीवी आजाद होता है, अखबार आजाद होता है। ये हमारी बेवकूफी है, कुंद नजरी है कि हमें हकीकत नजर नहीं आ रही होती, वरना हकीकत यही है कि गवर्नमेंट की इजाजत के बगैर अखबार में चीजें नहीं आ सकती हैं, गवर्नमेंट की इजाजत के बगैर टीवी पे चीजें नहीं आ सकती हैं। ठीक है, और इजाजत के बगैर तो हल्का मामला है। हकीकत यह है कि टीवी पे वही आता है जो गवर्नमेंट चाहती है, जो अखबार में वही आता है जो गवर्नमेंट अप्रूव करती है, चाहती है, उसके बगैर नहीं आता कुछ भी। ठीक है ना, चले, ये तो हो गई टीवी और अखबार वगैरह के बारे में। सोशल मीडिया के बारे में एक जनरल परसेप्शन ये है कि इट्स नॉट कंट्रोल्ड, ये कंट्रोल्ड नहीं है, यानी बिल्कुल ही आजाद है, जिसका जो चीज चाहता है उसके ऊपर पोस्ट कर देता है। ठीक है, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं है, हकीकत में ऐसा नहीं है। ठीक है ना, सोशल मीडिया के ऊपर आपने सुना होगा एक कॉन्सेप्ट है जिसको कहते हैं इन्फ्लुएंसर्स, इन्फ्लुएंस करने वाले। ठीक है, ये जो इन्फ्लुएंसर्स होते हैं ना, ये ह्यूमन बीइंग्स भी होते हैं, और आजकल शायद एआई रोबोट्स भी होते हैं। ठीक है, जिनको पता नहीं क्या बॉट कहते हैं या क्या कहते हैं, ठीक है ना, लेकिन ह्यूमन बीइंग्स होते हैं बेसिकली। ठीक है, ये जो है ना, इन्होंने इंसानी जहनों को किसी तरफ माइल करने के लिए इंसानी जहनों के ऊपर बड़ी गहरी रिसर्च करी हुई होती है, और ये भी पीछे से ऑर्गेनाइजेशनल ही होते हैं, इनके पीछे भी ऑर्गेनाइजेशंस ही होती हैं, जिन्होंने जो है ना वो ऐसे बंदे हायर किए हुए होते हैं, चाहे वो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन हो चाहे वो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हो, इन्होंने ऐसे बंदे हायर किए हुए होते हैं जो कि इंसानों के जहनों से खेलना, जहनों को एक तरफ चलाना ये जानते हैं। इसके ऊपर उन्होंने बड़ी गहरी जो है ना रिसर्च और बड़ी गहरी जो है वो प्रैक्टिस करी हुई होती है। तो ये सोशल मीडिया के ऊपर जो है ना छोड़ते हैं चीजों को छोड़ते हैं, जैसे कि कोई क्या कहते हैं, कोई आपने एजेंट छोड़ दिया जैसे, ठीक है ना, वो एजेंट जाकर के अब अपना काम कर रहा है। ठीक है, तो ये जो है ना वो वीडियोज बना करके छोड़ेंगे, ये जो है वो दूसरे खबरें जो है वो छोड़ेंगे सोशल मीडिया के ऊपर, और ऐसे छोड़ेंगे कि जो पढ़ने वाला है या जो देखने वाला है ना वो बहुत ही कंपेल्ड फील करे, बहुत ही कंपेल्ड फील करे उसको आगे बढ़ाने के ऊपर। ठीक है ना, देख करके या पढ़ करके उसको दिल चाहे कि मैं इसको फौरन फॉरवर्ड करूं। तो इस तरीके से उन्होंने तो छोड़ दिया, इन्फ्लुएंसर ने शुरू में छोड़ दिया, अब जो है ना वो बाकी लोग खुद उसको आगे फॉरवर्ड कर रहे हैं। अच्छा, ये नहीं है कि वो छोड़ने के बाद वो बिल्कुल लाताल्लुक हो गया, नहीं, बीच बीच में भी इन्फ्लुएंसर्स का अमल हो सकता है कि मजीद उसको आगे फॉरवर्ड करने के लिए इन्फ्लुएंसर जो है ना वो कहीं बीच में भी अपना काम कर रहे हैं। ठीक है ना, या लोग अगर फॉरवर्ड नहीं कर रहे तो वो कोई दूसरा तरीका, वो देख रहे हैं कि भाई हमारी जो जो चीज़ है ना वो ज्यादा फॉरवर्ड नहीं हो रही, ज्यादा जो है वो वायरल नहीं हो रही, तो अब वो उसके अंदर कोई तब्दीली लेकर के आएंगे, कुछ उसके अंदर जो है वो कुछ और ऐसी चीज लेकर आएंगे कि लोग पहले अगर मुतवज्जो नहीं हो रहे थे उसकी तरफ, तो अब मुतवज्जो होना शुरू हो जाए, ठीक है ना। तो इस तरीके से जो है ना, ये सोशल मीडिया जो है, ये एक बहुत एडवांस्ड लेवल ऑफ कंट्रोल है, ये बहुत एडवांस्ड लेवल ऑफ कंट्रोल है। जबकि टीवी और जो बाकी चीजें थी, अखबार और रेडियो वगैरह, ये भी कंट्रोल थे, और इनके ऊपर भी जो चीजें आती थी वो भी इंसानों के जहनों को जो है वो एक तरफ माइल करने के लिए ही बनाई जाती हैं, ठीक है ना, वो भी इसी मकसद से बनाई जाती हैं। लेकिन वो एक प्रिमिटिव, एक बड़ा क्या कहते हैं, आज के दौर से अगर, यानी अगर आज देखा जाए तो वो बड़ा प्रिमिटिव फॉर्म ऑफ कंट्रोल था, ठीक है ना, बड़ा सादा सा एक कंट्रोल करने का निजाम है वो, टीवी ड्रामों के जरिए से और अखबार की खबरों के जरिए से या अखबार के आर्टिकल्स के जरिए से, ठीक है ना। उसमें आपको पीछे एक हाथ जो है वो नजर आ सकता है, आप पीछे देख सकते हैं किसने लिखा है, किसने जो है वो अखबार को कौन रन कर रहा है, लेकिन सोशल मीडिया में ये हाथ आपको नजर नहीं आता। आप इस धोखे में मुबतला रहते हैं कि ये तो हमारे जैसे आम लोग हैं, है ना, जिस तरह मैं सोशल मीडिया पे कोई चीज पोस्ट कर देता हूँ, उसी तरह से दूसरे लोग जो है वो सोशल मीडिया पे चीजें पोस्ट कर देते हैं, आप समझ रहे होते हैं कि कोई कंट्रोल नहीं कर रहा, लेकिन वो कंट्रोल किया जा रहा होता है, ठीक है। इस वजह से ऐसा कंटेंट छोड़ते हैं कि जिस कंटेंट के जरिए से जो है ना वो एक आइडिया सेल करना चाहते हैं, किसी को अच्छा बना के पेश करना चाहते हैं, किसी को बुरा बना के पेश करना चाहते हैं, और इसके पीछे जो है वो बड़े गहरे मकासद होते हैं। और ये जो सोशल मीडिया के जो तरीका है ना, ये तरीका अगर हम कुरान और हदीस की रोशनी में इसको देखें, तो ये बहुत आसानी से इसको समझना मुमकिन है कि ये बिल्कुल एग्जैक्टली फितने दज्जाल की फॉर्म है, ये फितने दज्जाल का फॉर्म है, ठीक है, कि इसके अंदर दज्जल और फरेब जो है ना वो इंतहा दर्जे का है। अब अल्लाह अल्लाह बेहतर जानता है कि दज्जाल के जहूर से पहले क्या सोशल मीडिया से भी ज्यादा कोई डिसेप्टिव चीज आनी है या नहीं आनी, बस यही काफी है कि बस यही जो है ना वो डिसेप्शन और ये, यानी धोखे दही के लिए ये एक्सट्रीम फॉर्म है सोशल मीडिया, और बस इसके बाद दज्जाल ने जाहिर हो जाना है, अल्लाह बेहतर जानता है, हमें नहीं पता, लेकिन इंतहा दर्जे की डिसेप्शन जो है ना वो सोशल मीडिया के अंदर है, और हम इसको बिल्कुल भी इसको समझ नहीं पा रहे हैं। हम समझ रहे हैं कि जो हमारे पास वीडियो आ रही है वो जैसी नजर आ रही है ना वैसे ही है, जैसा उसके ऊपर लिखा हुआ है वैसा ही उसके अंदर हकीकत है, हालांकि बहुत से मामलात में हमें कुछ पता नहीं होता कि फॉर एग्जाम्पल ट्रांसलेशन करके उन्होंने कोई वीडियो आपके पास भेज दी कि भाई इसकी ट्रांसलेशन ये है, अब हम जो है ना वो उसकी ट्रांसलेशन को, अगर हमारे मिजाज के मुताबिक है वो, तो हम उसकी ट्रांसलेशन को अज्यूम कर लेंगे कि वो 100% ठीक है, हालांकि हमें नहीं पता कि वो 100% ठीक है या सिर्फ 50% ठीक है, हमें नहीं पता कि वो 80% ठीक है या वो 30% ठीक है, बाकी 80% उसके अंदर जो है वो झूठ मिला हुआ है, हमें नहीं पता ये बात, लेकिन हम उसको मान लेंगे और मानने के बाद फौरन उसको आगे फॉरवर्ड करेंगे, क्योंकि उसके अंदर से सिर्फ 30% जो था ना वो हमारे मिजाज से मिलता था, और बाकी जो है ना वो ऐसी चीजें थी जिनके बारे में हमें कुछ पता नहीं था, लेकिन हमने उस 30% की बुनियाद पर फैसला कर लिया कि ये बहुत अच्छी चीज है, उसको फौरन आगे फॉरवर्ड करो। शुरू उन्होंने जो है वो ऐसे किया था कि हदीसें, झूठी झूठी हदीसें भेजते थे, और लोग जो है ना वो बुखारी का नाम देख करके, मुस्लिम का नाम देख करके, अच्छा ये तो बुखारी मुस्लिम की हदीस है, चलो जी आगे फॉरवर्ड करो, हालांकि एक आम आदमी को नहीं पता कि ये बुखारी की हदीस है मुस्लिम की हदीस है, कुछ नहीं पता उसको, लेकिन वो नाम देख करके वो समझेगा कि देखिए भेजने वाले बिल्कुल सही बात भेजिए, ठीक है। तो हम जो है ना वो क्या कर रहे होते हैं, हम यही हरकत कर रहे होते हैं कि हम गोया के काजी के कुर्सी पर बैठे हुए हैं, काजी की कुर्सी पर बैठे हुए हैं, और जो भेजने वाला, ठीक है, वो जो क्लेम कर रहा है और उसके जो दलाइल हैं उसकी बुनियाद पर हम फैसला कर लेते हैं, हम कराइन को नहीं देख रहे होते, हम एक्सटर्नल फैक्टर्स को बिल्कुल नजरअंदाज कर रहे होते हैं, हम माजी, बल्कि माजी बईद तो क्या, माजी करीब की चीजों को नहीं देख रहे होते कि इस बंदे की तरफ से जो चीजें हमारे पास आई हैं, तो चंद दिन पहले तो इसने कोई और बात करी थी, चंद दिन पहले तो इसका मामला बिल्कुल डिफरेंट था, आज ये बिल्कुल यू टर्न लेकर के जो है वो इस किस्म की बात क्यों कर रहा है, हम भूल जाते हैं, हम चंद दिन पहले की बात भूल जाते हैं, बल्कि हकीकत तो ये है कि हम चंद घंटों पहले की बात भूल जाते हैं, बल्कि बल्कि इससे भी ज्यादा हकीकत यह है कि हम चंद मिनटों पहले की बात भूल जाते हैं। भाई इन बातों को आप याद रखें, पहले क्या कहा था, उससे पहले क्या किया था, उससे पहले क्या किया था, और अब जो है वो क्या स्टोरी बना करके आपके सामने पेश कर रहा है, नहीं हम जो है ना वो बस जाहिर के ऊपर फैसला कर लेते हैं, जो उसका क्लेम है और जो उसके दलायल हैं, अगर हमें भा रहे हैं तो हमने उसके हक में फैसला कर लिया कि हाँ ये अच्छा है, और अगर जो है वो किसी के खिलाफ वो बात कर रहा है और उसके दलायल और उसके जो जो अल्फाज हैं और जो उसके क्लेम है वो हमारे जी को भा रहा है, हमारे जी को भा रहा है, ठीक है ना, तो हम फैसला कर लेते हैं कि हाँ जिसके बारे में ये हमें बता रहे ना कि ये बुरा है वो बुरा है, तो हम उसकी बुराई को आगे फॉरवर्ड कर देते हैं, ठीक है। तो ये जो उसूल अभी हमने पढ़ा है ना हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के वाकये के अंदर, कि काजी का ये जिम्मेदारी है कि वो सिर्फ, यानी क्या लफ्ज था, सिर्फ जो है ना वो दावे और दलाइल की बुनियाद पर फरीकैन के फैसला ना कर दे, बल्कि वो हालात और कराइन पर भी नजर रखें, हालात और कराइन पर भी नजर रखें, ठीक है ना। तो अब हालात से मुराद क्या, सोशल मीडिया के ऊपर जो खबरें आ रही हैं उसके ऊपर जो वीडियोस आ रही हैं, तो भाई वो अगर वर्ल्ड इवेंट से रिलेटेड है तो भाई आप वर्ल्ड के हालात को फिर आपको नजर में रखना पड़ेगा, आपको वर्ल्ड के कराइन को जो है वो नजर में रखना पड़ेगा। अगर आप ऐसा कर सकते हैं तो ठीक है, और अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो मत करें उसको फॉरवर्ड, मत करें उसके बुनियाद पर कोई फैसला, ठीक है ना। बल्कि जिन लोगों को अल्लाह ताला ने बसारत दी है, पहले मैंने बसारत का लफ्ज इस्तेमाल किया है और फिर उसके बाद बसीरत दी है, तो उन लोगों के से पूछें या उन लोगों की तरह उसको रिफर कर दें, ठीक है। बसीरत का तो पता होगा कि भाई है ना, अंदर की नजर दी है, फुरकान अता फरमाया है, तकवा की बुनियाद पर फुरकान मिलता है, ठीक है। तो जो मुत्तकी लोग हैं उनको अल्लाह ताला ने फुरकान अता फरमाया होता है, उनकी हक और बातिल के दरमियान फैसला कर सकते हैं। और बसारत का मतलब क्या है, इनको जरा म्यूट कर देंगे, बसारत का मतलब क्या है कि भाई इनके पास फिजिकल सोर्सेज हैं, फिजिकल रिसोर्सेज हैं, और कि ये चीज के जो है ना वो तह तक पहुंच सकते हैं, ठीक है ना। आपके पास वो फिजिकल रिसोर्सेज नहीं है, आपके पास वो आंखें नहीं है जो कि दुनिया के हालात की तफसील में जा सकें, दुनिया के हालात के आगे पीछे ऊपर नीचे आपको बता सकें, आपके पास वो आंखें नहीं है, यानी आपके पास बसारत नहीं है, यू यू डोंट हैव ए व्यू इन टू द डिटेल्स, ठीक है ना। तो भाई जिनके पास व्यू है इन टू द डिटेल्स, यानी उनके पास बसारत है, तो उनसे पूछ लें, उनसे समझ लें, खुद से फैसला ना करें, ठीक है। तो बसारत और बसीरत ये दो चीजें जो है ना वो इस वक्त फितने दज्जाल से बचने के लिए लाजमी है, ठीक है। वरना इतना डिसेप्शन आ रहा है, और ये डिसेप्शन वो होता है कि जिसके अंदर वो सच और झूठ को मिला करके पेश करते हैं, ठीक है ना, सच और झूठ को मिला करके पेश करते हैं, वो साफ अगर झूठ बोल देंगे ना तो साफ झूठ को पकड़ना बड़ा आसान काम होता है, साफ झूठ को पकड़ना बड़ा आसान काम होता है, और साफ सच को भी पकड़ना बड़ा, यानी पहचानना आसान काम होता है। मसला तो वहां पर होता है कि जहां पर खलत मलत हो, जहां पे तलबीस हो, ठीक है ना। तो इतना बेवकूफ बनने की कोई जरूरत नहीं है कि ये समझना शुरू कर दें कि सोशल मीडिया पे आपके पास जो चीज आ रही है ना वो जैसी है वैसे ही है, हम उसके ऊपर जो है ना वो अपना खून भी खौलाना शुरू कर देते हैं, और उसके ऊपर ना जाने क्या क्या जो है वो फैसले कर लेते हैं, और क्या क्या जो है ना फिर उसके बाद हम आके इकदाम जो है वो करने की कोशिशें या पता नहीं क्या क्या उल्टी सीधी हरकतें शुरू कर देते हैं, ठीक है जी। कोई सवाल है इस मौजू के ऊपर तो पूछ लीजिए। आगे फरमाते हैं कि मारवर्दी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, गालबन ये मारवर्दी ही पढ़ेंगे इसको, उन्होंने फरमाया कि पैराहने यूसुफ में, पैराहने यूसुफ भी अजायब रोजगार में से है, तीन अजीम शान वकाए इसी पैराहन यानी कुर्ते से वाबस्ता है, ठीक है। यानी जो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कुर्ता पहना हुआ था उसको पैराहने यूसुफ का पहला वाकया जो उससे वाबस्ता है कि खून आलूद करके वालिद को धोखा देने और कुत्ते की शहादत से झूठ साबित होने का है, ठीक है, जो अभी हमने पढ़ लिया। दूसरा वाकया जुलेखा का, कि इसमें भी यूसुफ अलैहिस्सलाम का कुर्ता ही शहादत में पेश हुआ है, ठीक है, कि भाई आगे से पटा है कि पीछे से पटा है, आगे पढ़ेंगे इंशाल्लाह। और तीसरा वाकया याकूब अलैहिस्सलाम की बीनाई वापस आने का, उसमें भी उनका कुर्ता ही एजाज का मजहर साबित हुआ है, ठीक है, जिसमें के यूसुफ अलैहिस्सलाम की खुशबू थी और याकूब अलैहिस्सलाम की आंखें जो है वो उस कुर्ते के लगने से ठीक हो गई थी। तो बड़ा यानी यूसुफ अलैहिस्सलाम की कुर्ते की जो है ना वो कितनी सारी एप्लीकेशंस आ रही हैं इस किस्से के अंदर। मसला, बाज़ उलमा ने फरमाया कि याकूब अलैहिस्सलाम ने जो बात अपने साहिबजादों से उस वक्त कही थी कि बल सब वलत लकुम अनफुसुकुम अमरा, यानी तुम्हारे नफूस ने एक बात बनाई है, यही बात उस वक्त भी कही जब मिस्र में यूसुफ अलैहिस्सलाम के हकीकी भाई बिन्यामीन एक चोरी के इल्जाम में पकड़ लिए गए और उनके भाइयों ने याकूब अलैहिस्सलाम को उसकी खबर की तो फरमाया बल सव्वलत लकुम अनफुसुकुम, ठीक है कि नहीं याकूब वो जो बिन्यामीन है वो चोरी में नहीं पकड़ा गया, बल्कि फिर तुमने जो है वो एक बात घड़ ली है, फिर तुमने एक बात घड़ ली है, याकूब वो बिन्यामीन को चोरी में नहीं पकड़ा गया। ठीक है, तो यहाँ गौर करने का मकाम है कि हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने ये दोनों बातें अपनी राय से कही थी, ठीक है, उनमें से पहली बात सही निकली दूसरी सही नहीं थी। ठीक है, पहली बात सही निकली दूसरी जो है वो सही नहीं थी। पहली बात याकूब अलैहिस्सलाम ने जो कही थी कि यूसुफ को जो है वो भेड़िया नहीं खा गया बल्कि तुमने अपनी तरफ से ये बात बनाई हुई है, ठीक है, तो हकीकत क्या थी कि वाकई ये बात सच थी कि भेड़िया नहीं खा गया, तो फिर याकूब अलैहिस्सलाम ने ये बात क्यों कही थी, ठीक है ना, यानी उन्होंने देखा तो नहीं तब कि भेड़िया ने खा लिया, उन्होंने अपने ख्वाब की बुनियाद पर और कराइन की बुनियाद पर कि भाई ये जो भाई है ना ये तो यूसुफ से हसद में मुब्तला है, और फिर ख्वाब भी आया था, ठीक है, लेकिन ख्वाब जो है वो किसी दूसरे मौके के लिए भी तो हो सकता है ना, ठीक है, ख्वाब जैसे नबी अलैहिस्सलाम को ख्वाब आया था सुलह हुदैबिया से पहले कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो सहाबा के साथ उमरा कर रहे हैं, ठीक है, ख्वाब तो सच्चा था क्योंकि नबी का ख्वाब था, लेकिन उसका वक्त मुतय्यन नहीं था कि इस साल होगा उमरा, अगले साल होगा, उसके अगले साल होगा, उसके अगले साल होगा, नहीं पता। उसी तरीके से याकूब अलैहिस्सलाम ने भेड़िया वाला ख्वाब तो देखा था कि भेड़िया जो है वो याकूब सॉरी यूसुफ को जो है वो खा रहे हैं या पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, और उन्हीं भेड़ियों में से एक भेड़िया ने उसको बचा लिया, लेकिन याकूब अलैहिस्सलाम को भी वक्त का तयन तो उस ख्वाब में नहीं था ना, तो याकूब अलैहिस्सलाम ने ये जो बात कही कि तुम बल सव्वलत लकुम अनफुसुकुम, ये अपनी राय से कही, उनको 100% नहीं पता था क्योंकि मुशाहिदा नहीं था उनको, ठीक है, लेकिन वो ठीक हो गई, सही है, लेकिन जब बिन्यामीन वाले वाकये के अंदर उन्होंने बात कही तो वो भी अपनी राय से कही लेकिन राय बेस्ड ऑन कराइन थी, ठीक है, ये कराइन क्या थे कि भाई इनको जो है वो बिन्यामीन भी जो है वो सौतेला भाई थे, ठीक है, और इनको जिस तरह यूसुफ अलैहिस्सलाम से एक एक था खुदा वास्ते का बैर हो गया था, तो उसी तरह उनके सगे भाई के साथ भी खुदा वास्ते का बैर हो सकता है, और जो है ये भी कि ये लोग तो पहले भी इस किस्म की हरकत कर चुके हैं तो अब दोबारा भी इस किस्म की हरकत कर सकते हैं, लेकिन इस दफा उनकी राय गलत हो गई, ठीक है ना, राय से मुराद यहाँ पर इज्तिहाद कहा जाएगा, तो इस दफा मुज्तहिद साहब का इज्तिहाद जो है वो गलत हो गया, ठीक है, तो मुज्तहिद का इज्तिहाद गलत भी हो सकता है लेकिन उसको सवाब फिर भी मिलता है, ठीक है, तो अब हजरत ने यहाँ पर इससे जो मसला लिखा है वो ये है कि याकूब अलैहिस्सलाम ने ये दोनों बातें अपनी राय से कही थी, उनमें से पहली बात सही निकली दूसरी सही नहीं थी क्योंकि इसमें भाइयों का कसूर नहीं था, वो तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने पूरा को पूरा एक प्लान बनाया था बिन्यामीन को अपने पास रोकने का ना, इससे मालूम हुआ कि राय की गलती पैगंबरों से भी इब्तिदान हो सकती है अगरचे बाद में उनको बवही इलाही गलती पर कायम रही नहीं रहने दिया जाता, ठीक है ना, क्योंकि उनके साथ वही का एक सिलसिला होता है तो उनकी राय की गलती जो है वो बाद में उसकी उनकी तंबी कर दी जाती है, जैसे नबी अलैहिस्सलाम के पास जब कुरैश मक्का के सरदार आए हुए थे और जो है वो नाबीना सहाबी आ गए और उन्होंने जो है वो आपसे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी तरफ मुतवज्जे करने की कोशिश करी, तो नबी अलैहिस्सलाम की राय उस वक्त क्या थी कि मुझे कुरैश के सरदार के ऊपर ज्यादा तवज्जो देनी चाहिए, इनसे मैं बाद में बात कर लूंगा, गलत राय थी ये, और अल्लाह ताला ने मुतनब्बे कर दिया, सूरह अबस व तवल्ला नाजिल फरमा दी, ठीक है ना, कि भाई आपकी ये जो जजमेंट थी ना ये जजमेंट गलत थी, ठीक है ना, प्यार मोहब्बत से नाजिल फरमाई, प्यार मोहब्बत से जजमेंट बताते हैं अपने महबूब को सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लेकिन बताते तो है ना, ठीक है, तो इससे मजीद जो है वो ये बात कंफर्म ही होती है, प्रूफ ही होती है कि इवन अंबिया अलैहिस्सलाम अलैहिमस्सलाम आलिमुल गैब नहीं होते, ठीक है, उनको तकदीर अजली का नहीं पता होता, उनको जो है वो लोहे महफूज में क्या लिखा हुआ है उसका नहीं पता होता, वो आलमुल गैब नहीं होते हैं, ठीक है ना। जिसका अल्लाह ताला ने उनको खबर यानी खबर दे दी जिसकी, उसकी उनको खबर हो गई, जिसकी खबर नहीं दी उसकी उनको खबर नहीं हुई, ठीक है। तो जब अम्बिया अलैहि सलाम जो है वो उनसे राय की गलती हो सकती है, तो फिर जो उलमाए कराम होते हैं या मशायखे उजाम होते हैं उनसे राय की गलती भी हो सकती है, ठीक है ना, क्योंकि अम्बिया से तो वो कम दर्जे के होते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर एक फर्क है राय की गलती में और इल्म की गलती में, ठीक है ना। एक होता है इल्म की गलती, इल्म किस चीज का होता है, जो चीजें हो चुकी होती हैं, जो उसूल जो है वो तय हो चुके होते हैं या जो वाकयात हो चुके होते हैं। जो आलिम होता है तो जितना उसका इल्म में रसूख होगा उतना उसको जो है वो माजी के वाकयात का अच्छी तरह से इल्म होगा, ज्यादा जो है वो पक्का इल्म होगा और उसूल व कवायद का ज्यादा अच्छा इल्म होगा उसके मुताले की बुनियाद पर, ठीक है ना। तो उसूल व कवायद भी एक माजी की चीज होते हैं क्योंकि वो माजी में तय हो चुके होते हैं, उसूल और कवायद, प्रिंसिपल्स, लॉज, राइट। तो आलिम दीन जो है वो होता है जिसने अच्छे से किसी चीज का मुताला किया होता है, किसी को जिस चीज को जो है वो रिसर्च के साथ जो है वो पढ़ा लिखा होता है, उसको उसूलों का भी पता होता है, उसको माजी के वाकयात का भी पता होता है, लेकिन वो माजी में हो चुके होते हैं ना, वो चीजें माजी में हो चुकी होती हैं। लेकिन इस आलिम दीन को क्या दुनिया की खबरों का भी सारा का सारा पता है कि दुनिया में इस वक्त क्या हो रहा है, क्या जो है वो सच्चाई है, क्या जो है वो झूठ है। हाँ, बसीरत की बुनियाद पर इसका इल्म, इसकी जो बसीरत है, इसके तकवा की बुनियाद पर वो बसीरत से इसको बहुत सारी चीजें समझ में आ जाती हैं, लेकिन वो भी हतमी नहीं होती, 100% कंफर्म नहीं होती, ठीक है ना, क्योंकि ये एक एक प्रेजेंट की चीज है, ये एक फ्यूचर की चीज है, ठीक है। तो प्रेजेंट और फ्यूचर के बारे में तो इसने जो जजमेंट देनी है तो वो गलत भी हो सकती है, सही है। तो हमें अपने अकाबरीन की मकसद क्या है सारी बात करने का, कि हमारे जो अकाबिर उलमाए हक होते हैं और मशायख उजाम होते हैं ना, तो उनके जो इल्म है और उनका जो समझ है वो माजी के बारे में, तो उस पर हमें शक नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। माजी के बारे में जो इल्म है उनका कि भाई ऐसे ऐसे मामला हुआ, ऐसे जो है वो कुरान मजीद नाजिल हुआ, ऐसे कुरान मजीद की जो है तफसीर है, ऐसे हदीस मुबारक है, हदीस मुबारक की ये तफसीर है, राइट, और फिका की किताबों के अंदर जो है वो ये उसूल लिखे हुए हैं और ये जो है वो उसके कवानीन हैं, ये उसके कवायद हैं, ये इसकी तफसीलात हैं। भाई वो उलमाए कराम हैं और वो मशायख उजाम हैं, उनको इन चीजों का पता है, उसमें तो हमें उनके बारे में उनके ऊपर एतमाद करना चाहिए, ठीक है। लेकिन जो हाल और मुस्तकबिल की बातें हैं तो उनमें उनके ऊपर ऐसे नहीं कि भाई बस जो है सो है और उसका जो है वो कोई अल्टरनेटिव नहीं हो सकता, ठीक है ना। तो उसमें जो है ना वो इखलास के साथ और अदब के साथ आप अपने अकाबरीन के साथ, अगर आपके पास इल्म है किसी चीज का, अगर आपके पास किसी चीज का इल्म है, और हो सकता है कि पीर साहब के पास इल्म ना हो, राइट, जैसे सुलेमान अलैहिस्सलाम कितने बड़े पीर थे, राइट, अपने जमाने के तो सबसे बड़े सुलेमान अलैहिस्सलाम थे ना, लेकिन उनको मलका बिल्किस का नहीं पता था, तो कौन आके बता रहा है, इंसान भी नहीं बता रहा है, जिन तो दूर की बात, जिन्हों को तो फिर भी वो उड़ते फिरते हैं तो उनको पता है, नहीं जिन ने तो बताया ही नहीं, इंसान ने भी नहीं बताया, किसने बताया, हुदहुद ने बताया, ठीक है ना, कि मैं आपको खबर देता हूँ कि एक औरत की मलका की, ना? सही है। तो ये चीजें जो है ना वो इसके अंदर फिर अगर किसी के पास इल्म है तो वो आगे जा करके शेयर कर सकता है, जैसे कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे अकाबरीन जो है उस चीज के बारे में बड़े ओपन होते हैं, है ना, उनके पास आकर के कोई जो है वो खबरें, बल्कि वो पूछते भी हैं, सिर्फ ये नहीं कि अनसोलिसिटेड जो है वो कोई आके उनको बता दे कि जी ये खबर हुई है, ऐसा हुआ ऐसा हुआ, रोज पर डांट करके चुप नहीं करा देते, बल्कि सुन लेते हैं उन बातों को, ठीक है ना, बल्कि बहुत से तो पूछते भी, हमारे हजरत तो पूछते हैं कि वहां पे क्या हुआ, ऐसे क्या हुआ और वहां पे क्या होगा, ये क्या हुआ, लोग जो है वो अपनी राय बताते हैं या अपना इल्म जो है वो शेयर करते हैं आकर के, ठीक है। तो अंधी तकलीद जो है ना उसकी कोई जरूरत नहीं है, तकलीद की जरूरत है, अंधी तकलीद की कोई जरूरत नहीं है, और जमाने के जो हालात हैं और खुसूसन इस बारे में बहुत ज्यादा कॉन्शियस और अवेयर होने की जरूरत है कि हम इस वक्त जो है ना वो सोशल मीडिया का दौर, और अगर ऐन मुमकिन है कि ये दज्जाल का भी दौर है, ठीक है। तो इसमें जो है ना फिर यानी बहुत ज्यादा एहतियात करने की जरूरत है। बहरहाल आगे चलने की जी नीज कुर्तुबी में है कि इससे साबित हुआ कि राय की गलती बड़े बड़ों से हो सकती है। अंबिया से बड़ा तो दुनिया में और कोई हो ही नहीं सकता ना, अंबिया से बड़ा तो सिर्फ अल्लाह ताला की जात है। इसलिए हर साहिब राय को चाहिए कि अपनी राय को मुत्तहम समझे, ठीक है। मुत्तहम ये लफ्ज यहाँ पे इस तरह सुनिए लिखा हुआ, तो यानी मुत्तहम समझे। मुत्तहम का जो लफ्ज है ना, इस पे मुझे भी थोड़ी तहकीक करनी पड़ी थी कि भाई जिस तरह किसी चीज के अंदर जो है ना वो सस्पेक्ट, एक सस्पेक्शन होती है, सॉरी सस्पेशन होती है, ठीक है ना, सस्पेक्टेड कि भाई मुमकिन है कि ये राय जो है ना वो यानी ऐसी है जो कि सही नहीं हो, ठीक है। ये लफ्ज उर्दू के अंदर जो हम ज्यादा सादा इस्तेमाल करते हैं ना सादा लोग, वो है तोहमत, तोहमत याफ्ता, ठीक है, कि भाई हो सकता है कि मेरी राय जो है ना वो ऐसी हो जो कि गलत निकले, तो उसके ऊपर फिर तोहमत, वो तोहमत याफ्ता बन जाएगी, यानी सस्पेक्टेड अंग्रेजी में जो है वो किताबों में फिर लिखा हुआ है, ठीक है। तो भाई मुमकिन है कि मेरी राय गलत है, ठीक है। अगर हाँ आप अपनी राय जो है वो बयान कर रहे हैं तो उसमें जमूद ना करें कि भाई बस दिस इज दी ओनली पॉसिबिलिटी, देयर इज नो नो अदर पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। हाँ आप अपने हक में, जाहिर है आपकी कोई राय है तो आपके पास कोई दलाइल भी होंगे ना उसके, कोई आपने कराइन देखे होंगे, कोई आपने जो है वो चीजें समझी होंगी, कोई आपके पास जो है वो लॉजिकल रीजनिंग होगी, कोई आपके पास राइट फैक्ट्स एंड फिगर्स होंगे, तो वो सारी चीजें आप आगे बयान कर दें अगर अगला बंदा आपसे इत्तेफाक नहीं कर रहा, ठीक है। लेकिन जमूद ना करें, जम ना जाए उसके ऊपर कि दूसरों की बात सुनने मानने को तैयार ही ना हो, ठीक है। दूसरे का ओपिनियन भी सुन लें, दूसरे की राय भी सुन लें, अपनी राय भी बता दें, और राय के साथ जो है वो फिर दलाइल और जो आपके पास उसके एविडेंसेस हैं वगैरह वो भी आप आगे भेज, आगे यानी फॉरवर्ड कर दें, बता दें, ठीक है। ये तो हमारा दीन तो वैसे भी जिसको कहते हैं ना मुशावरा, मुशावराती दीन है ना, मशवरे के साथ, जो कुरान और हदीस की बातें कंफर्म हैं तो उनमें तो मशवरे की कोई गुंजाइश ही नहीं है, लेकिन जो तो चीजें ऐसी हैं भाई वर्ल्ड अफेयर से रिलेटेड है, कराइन से रिलेटेड है, तो उसमें तो फिर आप दूसरों से मशवरा भी कर सकते हैं, ठीक है। बल्कि करने का हुक्म है, मशाविर हूँ फिल अमर, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म था कि इनसे मशवरा लीजिए। हाँ मशवरा जो है वो अमीर के ऊपर, जो अमीर होता है, जो जो अगर कोई अमीर है किसी जमात के अंदर, तो वो मशवरा उसके ऊपर बाइंडिंग नहीं होता, अमीर के ऊपर मशवरा बाइंडिंग नहीं होता, ठीक है। लेकिन मशवरा करना जो है ये अल्लाह ताला का हुक्म है और नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नत है, मशवरा ले सबसे, लेकिन उसकी बुनियाद पर जो फैसला है ना वो अमीर का फैसला है। यही फर्क है असल में इस्लामी निजाम हुकूमत में और डेमोक्रेसी के अंदर, ठीक है ना। यानी वैसे तो डेमोक्रेसी को बहुत ही वो ना भाई ये तो हमारे इस्लाम के मुताबिक है, दीन के मुताबिक है, ठीक है। तो लेकिन यानी जो जो वेस्टर्न फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी है वो, और जो यानी अमारत जो दीन इस्लाम के अंदर है, उसमें फर्क ये है कि वेस्टर्न फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी में क्या होता है कि जो मशवरा देने वाली जमात है ना, अगर उसकी मेजोरिटी कोई मशवरा दे रही है तो अमीर के ऊपर यानी प्रेसिडेंट के ऊपर या प्राइम मिनिस्टर के ऊपर लाजमी है कि वो मेजोरिटी के सामने घुटने टेक दे, ठीक है ना, मेजोरिटी के सामने घुटना टेक दे, और जो है ना वो ही इज बाउंड, ठीक है ना। लेकिन दीन इस्लाम के अंदर मशवरे की तारीफ क्या है कि मशवरा आप लें लेकिन कोई लाजमी नहीं है कि अमीर जो है वो मशवरे का पाबंद हो कि वो उसने मशवरे के ऊपर ही अमल करना है अगर मेजोरिटी का कोई एक मशवरा हो जाए, नहीं, ठीक है ना। इसके ऊपर जो है ना वो उसने अल्लाह को हाजिर और नाजिर जान करके अल्लाह के हुक्मों और नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नत और जो है वो अपनी अकल, अपना इज्तिहाद, इसकी बुनियाद पर उसने फैसला करना, और नीचे वाले उसको फोर्स नहीं कर सकते कि नहीं आप जो है वो मेजोरिटी की बात माने, आप जो है ना वो अपने इज्तिहाद के मुताबिक फैसला ना करें, ठीक है। यह हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने फर्क लिखा है वेस्टर्न डेमोक्रेसी में और इस्लामिक मुशावराती निजाम के दरमियान। वजाअत सय्यारतुन फअरसलू वारिदहुम फअदला दलवा, ठीक है। तो इसमें जो लफ्ज सय्यारा है उसके माने हैं यहाँ पर काफिला, ठीक है, सिर्फ एक गाड़ी मुराद नहीं है बल्कि काफिला मुराद है। वारिद से मुराद वो लोग हैं जो काफिले से आगे रहते हैं, काफले की जरूरियात, पानी वगैरह मुहैया करना उनकी जिम्मेदारी होती है। ठीक है, इदला के मानी कुएं में डोल डालने के हैं, मतलब ये है कि इत्तेफाकन एक काफला उस सरजमीन पर आ निकला। तफसीर कुर्तुबी में है कि ये काफला मुल्क शाम से मिस्र जा रहा था, रास्ता भूलकर इस गैर आबाद जंगल में पहुंच गया और पानी लाने वालों को कुएं पर भेजा। ठीक है, शाम का जो पूरा का पूरा एरिया है, फलस्तीन की सरजमीन है, फिर जो है वो कुछ उर्दून की सरजमीन है, लेकिन ये ज्यादा सबसे बड़ा एरिया जो है वो शाम ही कहलाता है। शाम के बाद जो अगला रीजन आता है ना, वो इराक का रीजन आता है। ठीक है, तो इराक, फिर शाम, फिर उसके बाद जो है वो अर्ज़ फलस्तीन। ठीक है ना, और उसके बाद फलस्तीन से, आपको पता है आजकल तो सब सभी ये देख रहे हैं कि फलस्तीन से जो है ना वो बॉर्डर, गजा का जो बॉर्डर है वो किससे मिलता है, इजिप्ट से मिलता है। ठीक है ना, तो दीज आर जस्ट नेबर्स, सही। तो लोगों की क्या हुआ कि पानी लाने वालों को कुएं पर भेजा, लोगों की नजर में ये इत्तेफाकी वाकया था कि शामी काफिला रास्ता भूलकर यहां पहुंच गया और इस गैर आबाद कुएं से साफ का पड़ा। लेकिन राज कायनात का जानने वाला जानता है कि ये सब वाकयात एक मजबूत और मुस्तहकम निजाम की मिली हुई कड़ियां हैं। यूसुफ का पैदा करने वाला और उसकी हिफाजत करने वाला ही काफिले को रास्ते से हटाकर यहाँ लाता है और उसके आदमियों को उस गैर आबाद कुएं पर भेजता है। यही हाल है इन तमाम हालात तो वाकयात का जिनको आम इंसान इत्तेफाकी हवादिस समझते हैं और फलसफे वाले उनको बख्त व इत्तेफाक कहा करते हैं। ठीक है ना, फिलोसोफर्स उसको खुशबख्ती, बदबख्ती, ठीक है ना, यानी किस्मत का नाम दे देते हैं और जो है वो इत्तेफाक का नाम दे देते हैं, कोइंसिडेंस का। लेकिन नथिंग इज कोइंसिडेंस, इफ देयर इज अ गॉड देयर इज नथिंग कॉल्ड कोइंसिडेंस। कोई चीज खुद ब खुद के थोड़ी हो सकती है, इत्तेफाकी तौर पर, रैंडमली जिसको कहते हैं अंग्रेजी में। भाई या तो गॉड है या गॉड नहीं है, सीधी बात करो भाई। ठीक है ना, या अल्लाह है या अल्लाह नहीं है। ठीक है ना, अगर अल्लाह है जिसको कि तुम कहते हो हम मुसलमान हैं, हम अल्लाह पे यकीन रखते हैं, अल्लाह पे ईमान रखते हैं, तो फिर ये इत्तेफाकियात वाली जो 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 टर्मिनोलॉजीज है ना, इनको अपने लैंग्वेज में से बाहर निकालो, है ना। इसी वजह से हमारे मशायख जो है वो इत्तेफाक के लफ्ज को ही अवॉइड करते हैं, उसकी जगह कुदरतन, यानी अल्लाह की कुदरत से ये काम हुआ। ठीक है ना, जो चीज इत्तेफाकी बनते हैं ना फिलोसफर्स के नजदीक, उसको वो कुदरतन का लफ्ज उसके लिए इस्तेमाल करते हैं। तो फलसफे वाले उनको बख्त और इत्तफाक कहा करते हैं, जो दर हकीकत निजाम कायनात से नावाकफियत पर मबनी होता है, वरना सिलसिला तकवीन में कोई बख्त जो है ना वो सबसे बड़े फ़ाल है। ठीक है, लिमा यूरीद, जो वो इरादा करता है, मख्फी हिकमतों के तहत ऐसे हालात पैदा कर जी। तो फ़आलु लिमा युरीद, तो मख्फी हिकमतों के तहत अल्लाह ताला ऐसे हालात पैदा कर देते हैं कि जाहिरी वकाय से उनका जोड़ समझ में नहीं आता, जाहिरी तौर पर वो समझ में नहीं आ रहे होते हैं वाकयात को देख करके। लेकिन अल्लाह ताला के यहाँ हर चीज जो है ना वो मरबूत है, एक लड़ी में पिरोई हुई है, तो इंसान उनको इत्तेफाकी हवादिस करार देता है। ठीक है ना, क्योंकि इंसान की जो है वो अकल कम होती है और नजर जो है वो उसकी महदूद होती है, तो वो समझ जी ये रैंडमली ये चीजें हो रही हैं, लेकिन पीछे का निजाम जो है ना वो हर चीज को कंट्रोल किए हुआ है। इसी वजह से जो जो अपने तकवा के ऊपर मेहनत करते हैं ना, उनको फिर अल्लाह ताला बसीरत अता फरमा देते हैं। ठीक है, तो जो बसीरत वाले लोग होते हैं वो हर चीज के पीछे अल्लाह का हाथ देख रहे हो, है ना, उनको जो है ना ये दुनिया का निजाम एक पुतली तमाशे की तरह नजर आना शुरू हो जाता है, कि जिसमें पुतली तमाशा जो है ना वो तो बसारत से देख रहे हैं, जाहिर की आंख से देख रहे हैं, लेकिन बसीरत से मुस्तकिल हर चीज के पीछे अल्लाह ताला का अमल जो है वो उनको समझ में आ रहा होता है। ये मेरे परवरदिगार की हिकमत की वजह से ऐसा हुआ, ये मेरे परवरदिगार की मर्जी के बगैर ऐसा हो ही नहीं सकता था, रैंडमली ऐसा नहीं हो सकता था। ठीक है, अच्छा यहाँ पर एक आखिरी नुक्ते की बात करके आज इस क्लास खत्म करेगा, वो क्या है कि दज्जाल। ठीक है, फिर वही बात पलट करके आई दज्जाल के ऊपर है। दज्जाल जो है ना, ये है तो इंसान, ठीक है ना, मखलूक में से है और वो भी इंसान। कुछ किताबों में लिखा है कि इसका कोई एक पेरेंट जो था वो जिन था और एक पेरेंट जो है वो इंसान, ठीक है ना। बहरहाल ये इंसानी शक्ल सूरत वाला और इंसानी तौर तरीकों वाला, ठीक है, हदीस मुबारका के अंदर भी इसका जिक्र है। तो दज्जाल जो है ये दुनिया में क्या करने के लिए आएगा, ठीक है, कोई बताए जरा आपने से, ताकि जरा सा मुहक्कक हो जाए बात सबके जहनों के अंदर भी, ठीक है। दज्जाल दुनिया में क्या करने के लिए आएगा, मकसद क्या है इसका? ब्रेक्स इन द वॉइस, वो तो पुरानी बात हो गई जी। दज्जाल का मकसद क्या है इस दुनिया में, यानी उसका मकसद है जिंदगी। जी, ये आज के हालात को समझने के लिए एक उसूल आपके सामने प्रेजेंट करने की फिर से कोशिश कर रहे हैं। ईमान का टेस्ट नहीं, मैं ये नहीं पूछ रहा कि अल्लाह ताला उसको क्यों लेकर के आएंगे, नहीं पूछ रहा हूँ दज्जाल क्यों आएगा, ठीक है, फसाद फैलाने के लिए। दज्जाल का मकसद है जिंदगी फसाद फैलाना होगा, नहीं, ठीक है ना। टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन पीपल ऑफ ईमान एंड कुफर, नहीं, वो तो दाबतुल अर्थ का काम होगा। दाबतुल अर्थ पता है ना, वो जमीन से सफा पहाड़ में से एक जानवर निकलेगा और वो जो है वो निशान लगाएगा ईमान वालों के माथे के ऊपर, ठीक है। दज्जाल मीन्स मिसगाइड पीपल, नहीं, मैं उस शख्सियत दज्जाल की बात कर रहा हूँ कि वो दुनिया में जो आएगा तो उसका मकसद जिंदगी क्या होगा। सच में झूठ मिला के पेश करना जिससे लोग गुमराह हो जाए। मैं मकसद जिंदगी पूछ रहा हूँ यार, मैं आपसे मान ही नहीं पूछ रहा था जाओगे। ईमान से लोगों को हटाना, टू टेस्टिफाई पीपल, टेस्टिफाई पीपल नहीं, टेस्ट पीपल आप कहना चाह रहे हैं शायद, नहीं, अल्लाह ताला दज्जाल को भेजेंगे टेस्ट करने के लिए, लेकिन दज्जाल खुद टेस्ट करने के लिए नहीं आएगा। टू प्रूव नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ अल्लाह, ट्राइंग टू प्रूव नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ अल्लाह, ओके, ठीक है, चलें, यू आर गेटिंग देयर, आगे बताएं। ईमान से महरूम करना, नहीं। हैकल सुलेमानी की तामीर, नहीं। ईमान छीनना, नहीं। एग्जैक्टली, अब पहुंचे हैं आप, हैं, टू बिकम गॉड, नॉट टू बिकम गॉड, रादर टू पोज हिमसेल्फ एज गॉड, खुदा बनना। वो खुदाई का दावा करने के लिए आएगा, है ना, और उसका मकसद जिंदगी क्या होगा कि लोग मुझे खुदा मान जाएं, लोग मुझे क्या मान जाएं, खुदा मान जाएं, ठीक है, डेटी मान जाएं जिसकी इबादत की जाती है। वो इसलिए दुनिया के अंदर आएगा और ये उसका जो है वो गोल ऑफ लाइफ है। अभी भी जिंदा है बंदा, वह कहीं पर जैसे हदीस में पता चलता है, लेकिन निकल करके इसने क्या करना है, अपने आप को खुदा मनवाना है, मनवाने की कोशिश करनी है। इंटरनेट जरा ब्रेक हो जी। तो ये आज इसे कह रहा था कि दज्जाल का मकसद है जिंदगी जो है ना, वो अपने आप को खुदा मनवाना है, ठीक है ना। अब खुदा मनवाना कैसे वो ये काम करेगा, ठीक है, वो ये काम कैसे करेगा, ये भी चले आपसे पूछें या वक्त बहुत ज्यादा हो गया है। वो ये काम कैसे करेगा कि वो लोग उसको खुदा मान जाए, चले आपसे आपसे पूछते हैं, और इसका ताल्लुक इस पैराग्राफ से है जो पैराग्राफ अभी हमने पढ़ा है, ठीक है। तो इस पैराग्राफ के ऊपर एक नजर डाल करके फिर आप इस सवाल का जवाब देने की कोशिश करें। जी, खुदा कैसे मनवाते हैं अपने आप को, अल्लाह ना करे आप में से किसी ने कोशिश करी हो या किसी का इरादा हो, ठीक है ना, लेकिन फिर भी अल्लाह ताला ने एक इमेजिनेशन की पावर दी है, अकल की पावर दी है, तो हम उसको इस्तेमाल करते हुए सोच सकते हैं कि कोई अगर अपने आप को खुदा मनवाना चाहेगा तो उसके लिए क्या करेगा, ठीक है ना। तो वो लोगों को क्या सर पे आके खड़ा हो, मुझे खुदा मानो, मुझे खुदा मानो, मुझे खुदा मानो, तो लोग उसकी बात मान के उसको खुदा मानना शुरू हो जाएंगे। नहीं, इतना तो आसान नहीं है कि लोगों का खुदा चेंज करवा देना, इतना तो आसान नहीं है ना, ठीक है।
दजल से मसीहा बनकर, मसीहा का मतलब क्या होता है, बाय कंट्रोलिंग नेचुरल एलिमेंट्स, ठीक है ना, दैट्स अ गुड आंसर, ठीक है ना। मसीहा से मुराद इलाज करने वाला अगर हम लें तो हाँ, खुदा जो है वो इलाज करने वाला, उसके हाथ में शिफा होती है, तो वो शिफा, ठीक है ना, लोगों को की बीमारियों का इलाज, ठीक है ना, और ऐसा इलाज कि उनको वाकई शिफा भी मिल जाए, तो इससे लोगों को एक अंदेशा होगा कि हाँ, ये लगता है ये खुदा ही है, जैसा कि ये कह रहे हैं ना कि मैं खुदा हूं, तो देखो इसने इलाज कर लिया ना, सेहत मिल गई ना लोगों को, तो हाँ इसके अंदर तो ये खुदाई सिफत है, ठीक है ना। फिर नेचुरल एलिमेंट्स यानी क्लाइमेट को कंट्रोल करना, क्लाइमेट को कंट्रोल करना ये खुदा की सिफत है, तो दज्जाल आकर के क्लाइमेट को कंट्रोल करके लोगों को दिखाएगा, तो लोग कहेंगे हाँ भाई वाकई ये तो खुदाई सिफत थी, इस बंदे ने कर दी, ठीक है, लोगों की हर डिमांड पूरी करेगा, हर डिमांड पूरी करेगा, हर डिमांड पूरी करेगा, वो जो चंद उसके पास होंगे बेवकूफ, उनकी शायद डिमांड पूरी कर दे, लेकिन हर बंदे की हर डिमांड तो पूरी नहीं कर सकता, इतने उसको करने की जरूरत भी नहीं है, बेवकूफों को बेवकूफ बनाने में इतना मेहनत नहीं करनी पड़ती। बहरहाल आगे चलें, विल ट्राई टू परफॉर्म सच एक्ट्स दैट आर नॉट पॉसिबल बाय एनी ह्यूमन और एनी अदर पावर इन द यूनिवर्स। यूनिवर्स की पावर्स को तो छोड़ें, बस जो दुनिया के अंदर लोगों की पावर्स हमने देखी हैं, तो वो हाँ वो ऐसे काम करेगा, ठीक है, वो काम जो खुदा के हैं वही काम करेगा, जैसे लोगों की खुराक, खुराक कंट्रोल करेगा, ये तो पता है ना, खुराक कंट्रोल करेगा, गिजा को कंट्रोल करेगा, ठीक है ना, हेल्थ सिस्टम्स को कंट्रोल करेगा, राइट, क्लाइमेट सिस्टम्स को कंट्रोल करेगा, टू टेल पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर ऑफ पीपल, हाँ इस किस्म की भी कुछ जो है वो हरकत किसी तरीके से डिसेप्शन के जरिए से करने की कोशिश करेगा। और इस पैराग्राफ से क्या रिलेटेड, इस पैराग्राफ से रिलेटेड क्या बात है जिसका के खास ताल्लुक है आजकल के हालात से, वो ये है कि जैसे बनने की कोशिश कर सकता है वो, है ना, कोशिश करके देखो मैं कर गुजरता हूँ जो मैं इरादा करता हूँ, ठीक है ना, टू क्लेम पावर टू गिव लाइफ एंड डेथ, राइट, ठीक है ना, अल्लाह जो है वो जिंदगी देना और मौत देने वाला, ठीक है, तो वो क्लेम करेगा और कुछ प्रूफ करने की कोशिश भी करेगा कि लोगों को मार दिया, लोगों को जिंदा कर दिया, ठीक है ना, यानी हेल्थ सिस्टम्स, लोगों को जिंदा कर देने का मतलब क्या, हेल्थ सिस्टम्स इतने ज्यादा सोफिस्टिकेटेड के पास होंगे कि लोगों को जिंदा भी, ठीक है, यानी वो अब वो सूडो सूडो डेथ ये सब वाकयात एक मजबूत और मुस्तहकम निजाम की मिली हुई कड़ियां हैं, ठीक है ना, मजबूत और मुस्तहकम निजाम, तो ये जो दज्जाल जो है ना, ये भी अपने डिसेप्शन को इस तरीके से करेगा कि वो जो दुनिया के अंदर इवेंट्स लेकर के आएगा ना, ये इवेंट्स जो हैं ये दरअसल प्री प्लान्ड होंगे, ये प्री प्लान्ड इवेंट्स होंगे एंड दे हैव कनेक्शन टू अदर इवेंट्स, ठीक है, और देखने वाले जो सोशल मीडिया के ऊपर या दूसरे मीडिया के ऊपर इन इवेंट्स को देख रहे होंगे ना, वो समझ रहे होंगे कि जैसे कि ये रैंडम इवेंट्स हैं, या ये जो है ना वो जो जो प्लेयर्स है ना, जो पुतनियां हैं ना, ये पुतनियां कर रही हैं ये वाला काम, हालांकि पुतनियां ये काम नहीं कर रही होंगी, इसने पीछे अपना एक दज्जाली निजाम बनाया हुआ होगा, ठीक है, एक दज्जाली निजाम बनाया हुआ होगा, वो दज्जाली निजाम जो है वो चीजों को कंट्रोल कर रहा होगा, और लोग समझ रहे होंगे कि सामने जो एक्टर्स नजर आ रहे हैं ना, जो पुतनियां नजर आ रही हैं ना, वो काम कर रही हैं, हालांकि पीछे दज्जाल का निजाम, लेकिन ये दज्जाल का निजाम ये खुदा के निजाम से बढ़कर नहीं होगा, ये नहीं हो सकता कि दज्जाल का निजाम जो है वो खुदा के निजाम से बढ़कर हो जाए, नहीं, दज्जाल के निजाम के पीछे भी एक निजाम होगा जो कि असल निजाम है खुदा का निजाम, अल्लाह का निजाम, ठीक है ना, लेकिन ये अल्लाह के निजाम और लोगों को नजर आने वाले निजाम के दरमियान में अपनी एक सूडो लेयर क्रिएट करेगा, अपनी एक सूडो लेयर, एक नॉन रियल लेयर लेयर क्रिएट करेगा, ठीक है ना, जिसके जरिए से जो है ना वो चीजों को कंट्रोल करने की कोशिश करेगा ताकि धोखा जो है ना वो इसका कामिल हो सके, ठीक है ना, लोगों को ये कामिल तरीके से धोखा दे सके, ठीक है, ये आजिस आपको बताना चाह रहा था, उम्मीद है कि बात अपनी मैं आप तक पहुंचा पाया हूँ, अल्लाह ताला बात की समझ अमल की तौफीक के मुताबिक अता फरमाए, वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।